नमस्कार भारत, 8 नवंबर शुक्रवार, मैं हूं आदर्श राठौर। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सैन्य गठबंधन नेटो को कहा ब्रेन डेड, सदस्य देशों की मिलीजुली प्रतिक्रिया।
एनी अटेम्प्ट टू डिस्टेंस यूरोप फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका।
महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर बीजेपी से गतिरोध जारी रहने के बाद शिवसेना ने होटल में भेजे अपने विधायक। जानेंगे झारखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है सरगर्मियां। भारत में 2016 में हुई नोटबंदी के 3 साल पूरे। जानेंगे नकदी आधारित असंगठित उद्योगों के आज क्या है हाल।
मुश्किल से 500 या 1000 रुपए का कार्ड लेके कोई आता है कि आप कार्ड से कर दीजिए। अब जब कस्टमर ही मुझे कैश दे रहा है, मैं उसको कार्ड से कैसे करूँ।
होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कमलेश मठेनी से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ब्रितानी अखबार इकोनॉमिस्ट को दिए एक साक्षात्कार में नेटो गठबंधन को ब्रेन डेड बताया है। उनके इस बयान के बाद विवाद पैदा हो गया है। जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल ने कहा है कि वह इस मामले पर मैक्रों से सहमत नहीं है, लेकिन रूस ने फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान का स्वागत किया है। न्यूयॉर्क के एक जज ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी चैरिटी संस्था के पैसे के अवैध इस्तेमाल के मामले में $20,00,000 जुर्माना देने का आदेश दिया है। उन पर 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में चैरिटी संस्था के पैसे का इस्तेमाल करने का आरोप है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने डोनाल्ड जे फाउंडेशन के निदेशकों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दायर किया था। निदेशकों में डोनाल्ड ट्रंप और उनके 3 बच्चे शामिल हैं। मेक्सिको में मारे गए मोरमोन समुदाय के 9 अमरीकी नागरिकों का अंतिम संस्कार ला मोरा गांव में शुरू हो गया है। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग इकट्ठे हुए हैं। यहां अमरीका से भी कई लोग पहुंचे हैं। ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए गांव में सैनिक तैनात किए गए हैं। उत्तरी मेक्सिको में संदिग्ध ड्रग माफिया के हमले में मोरमोन परिवार के 9 सदस्यों की मौत हो गई थी। यूरोप आज जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिराए जाने की 30वीं सालगिरह मना रहा है। इस दीवार को 1989 में गिराया गया था। इस दीवार की वजह से शीतयुद्ध के दौरान कम्युनिस्ट पूर्वी यूरोप के लोग पश्चिमी यूरोप में दाखिल नहीं हो पाते थे। दक्षिण सूडान के प्रतिद्वंदी नेताओं में सभी पक्षों की मिलीजुली राष्ट्रीय सरकार बनाने पर सहमति नहीं बन पाई है। पिछले साल दोनों धड़ों के बीच हुए शांति समझौते में राष्ट्रीय सरकार बनाना मुख्य बिंदु था। दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर और पूर्व विद्रोही नेता रिएक माचार ने कहा है कि उन्हें इसके लिए और 100 दिनों का समय चाहिए। राष्ट्रपति के प्रवक्ता एंटेनिये वेक एंटेनिये ने बीबीसी को बताया।
The future of the revitalized peace agreement or resolution of conflict.
शांति समझौते के भविष्य और टकरावों के समाधान पर लंबी चर्चा हुई। राष्ट्रपति 12 को सरकार बनाना चाहते थे, लेकिन रिएक माचार 6 महीने का और समय चाहते थे। ऐसे में गारंटीकर्ताओं ने बीच का रास्ता निकाला और 100 दिनों के समय पर सहमति बनी। ये थे दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति के प्रवक्ता के शब्द। सोने का खनन करने वाली कनाडाई कंपनी सेमाफो ने बुर्किना फासो में बोंगू खदान में काम बंद कर दिया है। बुधवार को सेमाफो के लिए कामगारों को ले जा रहे वाहनों पर हमला हुआ था, जिसमें 37 लोगों की मौत हो गई। कंपनी का कहना है कि इस मामले में 60 लोग घायल हुए हैं और कई लापता हैं। इस घटना के बाद बुर्किना फासो में 3 दिन के शोक की घोषणा की गई है और राष्ट्रपति रॉक केबेरो ने पीड़ितों और उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की हैं। एक बार फिर हमारे लोग आतंकवादी समूहों के कारण शोक में हैं। वो हमारे लोगों, सेना और सुरक्षा बलों की हत्या कर रहे हैं। इन दुख भरी परिस्थितियों में मैं इस हमले में अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदनाएं जाहिर करता हूं। ये थे बुर्किना फासो के राष्ट्रपति के शब्द। यह सामने आया है कि अमरीकी विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने महाभियोग जांच में बताया था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकील रूडी जुलियाने ने यूक्रेन में तत्कालीन अमरीकी राजदूत मरिया योवानोविच को बदनाम करने की कोशिश की थी। रूडी जुलियाने इस जांच में मुख्य शख्स हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के दावों की पड़ताल करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। हालांकि ट्रंप इन आरोपों से इनकार करते हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन सकते हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। कार्यक्रम की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार से। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से पश्चिमी देशों के सैन्य गठबंधन नेटो को लेकर दिए गए एक बयान से विवाद खड़ा हो गया है। फ्रांस भी नेटो का हिस्सा है, लेकिन मैक्रों ने नेटो को ब्रेन डेड बताते हुए अमरीका की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। मैक्रों के बयान पर नेटो, अमरीका और जर्मनी की प्रतिक्रिया तो आई ही है, रूस ने भी टिप्पणी कर दी है। किस बात को लेकर नाराज है मैक्रों और क्यों इस सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन में नाराजगी के स्वर उठने लगे हैं, जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नेटो गठबंधन को ब्रेन डेड बताते हुए कहा है कि वह इस सैन्य गठबंधन के मुख्य सदस्य अमरीका की ओर से जिम्मेदारी की भावना में कमी देख रहे हैं। ब्रितानी अखबार इकोनॉमिस्ट को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उत्तरी सीरिया से सैनिक हटाने से पहले अमरीका ने नेटो से मशविरा नहीं किया था। अमरीका ने पिछले महीने उत्तर पूर्व सीरिया से अचानक अपने सैनिक हटाने का फैसला लिया था, जिससे नेटो के शक्तिशाली सदस्य तुर्की को सीरिया में जाकर कुर्द लड़ाकों पर हमला करने का मौका मिल गया था। उस समय भी मैक्रों ने तुर्की को हमला करने से रोक पाने में नाकाम रहने के लिए अमरीका की आलोचना की थी। मैक्रों ने भले ही सैन्य गठबंधन को लेकर शंकाएं जताई हैं, मगर जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि वह इस मामले पर मैक्रों से सहमत नहीं है। मुझे लगता है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें नेटो अच्छा काम कर रहा है और हाल के सालों में इसका विस्तार हुआ है। 10 साल पहले के मुकाबले आज हम ज्यादा राजनीतिक काम कर रहे हैं। हमें इसे बढ़ाना चाहिए और जहाँ जहाँ मुश्किल आ रही है वो दूर करनी चाहिए। मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हूँ। ये थे जर्मनी की चांसलर अंगेला मर्केल के शब्द। नेटो 29 देशों की सेनाओं का एक सुरक्षा गठबंधन है जो इसके सदस्य देशों को जरूरत पड़ने पर सैन्य मदद प्रदान करता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ से यूरोप को संभावित खतरे को देखते हुए नेटो की स्थापना की गई थी। तब इसमें सिर्फ 12 देश शामिल थे। इसके सदस्यों के बीच सहमति है कि एक देश पर किया गया हमला सभी देशों पर किया गया हमला माना जाएगा। मगर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय देशों को चेताया है कि इस गठबंधन को बचाए रखने में अमेरिका पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उधर नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने जर्मनी में कहा कि इस गठबंधन को मजबूत करना नेटो के सदस्यों के हित में है। यूरोप को उत्तरी अमरीका से अलग करने का कोई भी प्रयास न सिर्फ गठबंधन को कमजोर करेगा बल्कि अटलांटिक महासागर के आर पार के देशों में स्थापित रिश्तों को कमजोर करते हुए यूरोप को भी विभाजित कर देगा। इसलिए हमें एकजुट रहना होगा। मैं यूरोपीय एकता का स्वागत करता हूं, मगर यूरोपीय एकता ट्रांस अटलांटिक एकता की जगह नहीं ले सकती। ये थे नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे हैं कि नेटो के यूरोपीय सदस्य सैन्य खर्च में अपनी ओर से उचित योगदान नहीं देते और अपनी सुरक्षा के लिए अमरीका पर निर्भर रहते हैं। इस बात को लेकर भी यूरोपीय सहयोगी देश नाराजगी जताते रहे हैं। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस संबंध में सफाई देते हुए कहा, नेटो महत्वपूर्ण, नाजुक और शायद ऐतिहासिक रूप से सबसे अहम रणनीतिक साझेदारी है। सच कहूं, जब राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि हर देश को मिलकर जिम्मेदारी उठानी चाहिए तो ऐसा इसलिए है क्योंकि नेटो गठबंधन की बहुत अहमियत है। इसलिए हर देश को मिलजुल कर सुरक्षा अभियानों में भाग लेना चाहिए और योगदान देना चाहिए। ये थे माइक पोम्पियो के शब्द। इस बीच नेटो को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा समझने वाले रूस ने फ्रांस के राष्ट्रपति के बयान का स्वागत किया है और उनके शब्दों को सच्चाई भरे शब्द कहा है। नेटो अगले महीने लंदन में अपनी स्थापना के 70 साल मनाने जा रहा है, मगर उससे ठीक पहले एक अहम सदस्य देश की ओर से आई टिप्पणी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
नेटो में क्यों उठने लगे हैं नाराजगी के स्वर, जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी। अब बात भारत की। सबसे पहले रुख करते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में कब तक सरकार बनेगी, इस पर गतिरोध बना हुआ है। गुरुवार को शिवसेना के 56 विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से उनके निवास मातोश्री पर मुलाकात की। उद्धव से मुलाकात के बाद विधायकों को मातोश्री के पास ही रंग शारदा होटल में भेज दिया गया है। मुंबई से बीबीसी संवाददाता मयूरेश कन्नूर हमारे साथ जुड़े हैं। मयूरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या तर्क दिया है अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट करने के पीछे शिवसेना ने।
शिवसेना ने ये कहा है कि आज का दिन बहुत अहम है और उनके किसी भी विधायक को, पहले तो उन्होंने ये कहा कि वो दो दिन के लिए यहाँ पे रहेंगे, जो ये विधायक है वो नए हैं, उनके पास घर नहीं है सरकारी, तो इसलिए उनको यहाँ पे रहने के लिए कहा है। लेकिन बाद में जब और पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है। शिवसेना ने कल सुबह ये भी आरोप किया था कि बीजेपी की तरफ से कोई उनके विधायकों को संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, तो किसी भी तरह का पोचिंग ना हो इसलिए उनको इकट्ठा रखा जाने की जरूरत है ऐसा लग रहा है, और इसी वजह से इन सबको इकट्ठा रखा है। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज जी हाँ हो रही है, अब सिर्फ आज का दिन बचा है, आज रात 12 बजे तक अगर ये सरकार नहीं बनती तो राष्ट्रपति शासन की जरूरत पड़ जाएगी। तो इससे पहले जिस तरह की गतिविधियां हो रही हैं इसी वजह से ये कदम उठाए जा रहे हैं। सिर्फ शिवसेना नहीं, मैं आपको बता दूं कि कल देर रात अभी कांग्रेस के गुट से भी ये खबर आ रही है कि सारे कांग्रेस के विधायक जो हैं उनको शायद राजस्थान ले जाया जा सकता है, क्योंकि वो भी ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह का उनके भी कोई विधायक उनसे दूर ना हो जाए, तो इस वजह से ये सारी
जी
कदम जो है वो उठाती दिखाई दे रही है सारी पॉलिटिकल पार्टीज।
मयूरेश, भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही होगी कि अब जो ये गतिरोध बना है उसको दूर करें, और क्या शिवसेना और बीजेपी के बीच में कोई बातचीत हुई कुछ, या बातचीत होने के संकेत हैं कुछ आज, वो जो गतिरोध है टूट सकता है?
अगर आधिकारिक तौर पर कहें तो कोई भी बात अब तक नहीं हुई है, दोनों अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं। बीजेपी ने अभी कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो शिवसेना से बात करेंगे मुख्यमंत्री की जो उनकी मुख्य मांग है उसको लेकर। लेकिन हाँ, मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि कल रात बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं दोनों की तरफ से, जो मध्यस्थ जिन्हें हैं उनको कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना ये होगा, कहा यह जा रहा है कि अगर कल शाम तक, आज शाम तक कुछ चीजें हाथ में आ जाएंगी। अगर वैसा नहीं होता तो देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देने से देना पड़ेगा, और फिर आगे क्या होगा। बीजेपी के नेताओं ने कल जैसा कहा कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मार्क किया है, इसलिए राज्यपाल से चर्चा की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शरद पवार ने पत्रकार परिषद में दो दिन पहले ये कहा था कि 24 घंटे अगर जब बचे हुए हैं तो उसमें से 23 घंटे भी निकल जाए तो आखिर के एक घंटे में कोई तो हल निकल सकता ही है, और अगर शिवसेना बीजेपी साथ में रहती है तो आज रात 12 बजे तक राह देखनी पड़ेगी।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीबीसी संवाददाता मयूरेश कुन्नूर बता रहे थे कि आज का दिन महाराष्ट्र के लिए काफी अहम है। अब रुख करते हैं झारखंड का, जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब 25 से भी कम दिन बचे हैं। इसके बावजूद न तो सत्ता पक्ष का कोई गठबंधन बन सका है, न विपक्षी पार्टियों का। इस बीच सभी दलों के नेताओं की तरफ से की जा रही बयानबाजी गठबंधन के पेच को और पेचीदा कर रही है। सुनिए रांची से हमारे सहयोगी रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड की सियासत इन दिनों दिल्ली शिफ्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता दिल्ली में हैं। वहां केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम और गठबंधन दोनों ही की घोषणा की जानी है। वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रमुख रामेश्वर उरांव, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधानसभा में विधायक दल के नेता आलमगीर आलम आदि भी दिल्ली में जमे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दिल्ली का चक्कर लगा चुके हैं। उन्होंने जेल में बंद आरजेडी प्रमुख लालू यादव से भी मुलाकात की थी। इसके बावजूद सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने गठबंधनों का खाका नहीं बना सका है। इस कारण सभी दलों के उम्मीदवारों की सांसें अटकी हुई हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश रस्क मानते हैं कि गठबंधन के ऐलान में अधिक विलंब होने पर इन दलों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओम प्रकाश रस्क ने बीबीसी से कहा,
एक गठबंधन जो बन रहा है सीधे सीधे दिख रहा है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। दूसरी तरफ एनडीए का राजग का जो गठबंधन है उसमें आजसू और भारतीय जनता पार्टी, ये दो पार्टियां हैं। इन दोनों गठबंधनों की स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए, चुनाव परिणाम के बाद जो स्थिति बनी है वहाँ, उसको ध्यान में रखते हुए भाजपा फूंक फूंक के चल रही है। कोई ऐसा मौका अपने सहयोगी पटल को देना नहीं चाहती है कि वो आगे चल के उसके लिए सिरदर्द बन जाए।
झारखंड में भाजपा और आजसू पार्टी का पारंपरिक गठबंधन रहा है। दोनों दल साल 2014 में हुए विधानसभा चुनाव और इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में भी साथ रहे थे। इस विधानसभा चुनाव में भी इनका गठबंधन होना है, लेकिन इसकी घोषणा नहीं की जा सकी है। सीटों को लेकर इनके बीच जीत होने की चर्चा है। हालांकि भाजपा के झारखंड प्रमुख लक्ष्मण गिलुआ ने बीबीसी से कहा कि आजसू पार्टी से सीटों को लेकर कोई जीत नहीं है, जो थोड़ी बहुत जीत है भी वह दूर कर ली जाएगी। यह तय है कि हम गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे।
अभी तो बातचीत दोबारा चल रहा है ना, बातचीत चल रहा है, एक दो दिन के अंदर गठबंधन क्लियर हो जाना चाहिए।
जी, तो एक जो ये अखबारों में खबर छपी है कि 81 सीटों की लिस्ट बन गई है, भाजपा ने बना ली है अलग से, तो इसमें कितना सच है?
सूची हम लोग जब रायसुमारी लेते हैं ना प्रमंडल वाइज, तो सभी विधानसभा क्षेत्र का कार्यकर्ता नाम देता है, उसमें कहाँ कोई दिक्कत है। तो एक राय है कार्यकर्ताओं का, राय है कार्यकर्ताओं का, इसके बाद हम लोग उसको सूचीबद्ध करते हैं।
मतलब ये कहा जा सकता है कि 1-2 दिनों में गठबंधन का ये पूरा
क्लियर हो जाएगा।
राज्य के उप मुख्यमंत्री रह चुके सुरेश महतो की आजसू पार्टी भी यही दावा कर रही है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने बीबीसी से कहा कि उनकी पार्टी राजग के साथ है और रहेगी। हम हर सीट पर जीत के हिसाब से उम्मीदवारों का चयन करेंगे और सीटों का बंटवारा भी इसी फॉर्मूले पर होगा।
हम लोग इस बार पूरी तैयारी किए है, 2.5 अंक में विधानसभा जाए, अभी तक हम लोग सिंगल सिंगल डिजिट में जाते रहे।
इधर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बीबीसी से कहा कि विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन में अब कोई विवाद नहीं है, यह करीब करीब तय है कि कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कुछ वाम दलों का महागठबंधन होगा। इसकी घोषणा जल्दी ही कर दी जाएगी।
बंधन हो जा रहा है और हमको लगता है कि कल मैंने उसकी घोषणा हो जानी चाहिए। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी और ये कम्युनिस्ट मैंने माथे सुसज को रखना चाहिए।
लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस, शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। इस महागठबंधन को करारी हार मिली। तब कांग्रेस और जेएमएम के सिर्फ एक एक उम्मीदवार चुनाव जीत सके थे। उस चुनाव में बाबूलाल मरांडी, शिबू सोरेन, सुबोधकांत सहाय सहित कद्दावर नेताओं की हार हुई। अब बाबूलाल मरांडी अकेले प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेगी। हालांकि हेमंत सोरेन ने कहा है कि वे अब भी बाबूलाल मरांडी से मिलने के इच्छुक हैं। बहरहाल कौन किससे मिलेगा और क्या खिचड़ी पकेगी, यह आने वाले 56 घंटों में साफ हो जाएगा। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
आज यानी 8 नवंबर को भारत में 1,000 और 500 के पुराने नोट बंद हुए 3 साल पूरे हो गए हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे नोटबंदी कहा गया। 3 साल बाद भी अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाला एक हिस्सा मान रहा है कि उसे नोटबंदी का नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि सरकार इस तरह के दावों को सही नहीं मानती और उसका कहना है कि नोटबंदी अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रही है। नकदी आधारित असंगठित उद्योगों पर इसका क्या असर हुआ है, इसी पर सुनिए बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी की रिपोर्ट।
हमारी लगभग 30-40% एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है। कैश का व्यापार जो है वो बिल्कुल बंद हो गया और लोग यहाँ पर बिजनेस करने से कतराने लगे कि कब क्या हो जाए। ऑलरेडी हम चाइना से बहुत बड़े कंपटीशन में हैं। चाइना की जो मार्केट है उसने सारी मार्केट कैप्चर की हुई है।
दर्शन डावर ने कपड़ा बुनाई उद्योग की ऐसी बदहाली पिछले 40 सालों में कभी नहीं देखी थी। बदहाली के कारण कई हैं: धीमी रफ्तार से खिसकती अर्थव्यवस्था, विदेशी सस्ते सामानों से प्रतिस्पर्धा, ऊपर से नगदी कारोबार पर सरकार का प्रतिबंध। पंजाब का लुधियाना कपड़ा बुनाई का केंद्र है। दर्शन डावर यहाँ के 12,000 कपड़ा कारोबारियों में एक है। ऐसे छोटे उद्योगों को भारत में असंगठित उद्योग कहा जाता है। इनका कारोबार अब भी नगदी पर आधारित है। नगदी पर प्रतिबंध लगने के 3 साल बाद भी उनके जैसे कई व्यापारी अपना कारोबार बचाने के लिए जूझ रहे हैं।
तो अगर मान लीजिए मैं 10,000 रुपए की सेल कर रहा हूँ तो मुश्किल से 500 या 1,000 रुपए का कार्ड लेके कोई आता है कि आप कार्ड से कर दीजिए। अब जब कस्टमर ही मुझे कैश दे रहा है, मैं उसको कार्ड से कैसे करूं?
ऊपर से विकास दर लुढ़ककर 5% पर आ गया है, जो पिछले 6 सालों में सबसे कम है। भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, लेकिन मौजूदा दर के हिसाब से ये लक्ष्य दूर की कौड़ी दिखती है। बड़े मूल्य के नोट समाप्त करने के सरकार के फैसले से मिले शुरुआती फायदे अब नुकसानदेह हो गए हैं। आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं
कि हमारे जो रोजगार के आंकड़े हैं, हमारे जो उत्पादन के आंकड़े हैं, वो जो माइक्रो सेक्टर है उसमें हर साल नहीं आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है। तो जो हमारा रेफरेंस ईयर होता है हर 5 साल में एक बार, वहाँ पे हम जो सर्वे करके उसके आंकड़े निकालते हैं, और उन जो रेफरेंस ईयर के बीच में हम ये मान लेते हैं कि असंग्रह क्षेत्र और संग्रह क्षेत्र बराबर रफ्तार से चल रहे हैं या एक पर्टिकुलर रेशियोज के हिसाब से चल रहे हैं। पर वो बात नवंबर 7 को सही थी, नवंबर 9 को सही नहीं थी, जबकि असंग्रह क्षेत्र बहुत बुरी तरह गिरने लगा था। तो अगर हम असंग्रह क्षेत्र के आंकड़ों को जोड़ लें कि अगर वो 10% भी गिर रहा है तो रेट ऑफ ग्रोथ हमारा नेगेटिव हो जाता है।
लेकिन निर्माता से रिटेलर तक सबकी एक ही कहानी है, ग्राहकों की खरीदारी में दिलचस्पी कम हो गई है। जो भी खरीदारी होती है उसका भुगतान नगद होता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में छोटे कारोबारों का योगदान करीब 50% है, जो 90% से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। जानकारों का कहना है कि जब तक सरकार इस क्षेत्र को राहत नहीं पहुंचाएगी, दुकानदारों के पास मंदी की मार झेलने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। अरुणोदय मुखर्जी, बीबीसी लुधियाना।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ हमारी सहयोगी कमलेश हमारे साथ हैं। जी कमलेश,
हमारे सामने टाइम्स ऑफ इंडिया है जिसमें खबर है कि कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव और अरुणाचल प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के लिए 820 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे। अखबार ने लिखा है कि 31 अक्टूबर को पार्टी ने चुनाव आयोग के पास चुनावी खर्चों का ब्यौरा दिया था जिसमें ये जानकारी दी गई है। हिंदुस्तान अखबार में एक खबर दी गई है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार ने करतारपुर के लिए पासपोर्ट की ज़रूरतों पर अलग अलग बातें कहीं। गुरुवार सुबह पाकिस्तानी सेना ने कहा कि पासपोर्ट ज़रूरी होगा। शाम को पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने कहा कि पासपोर्ट ज़रूरी नहीं होगा। हालांकि बाद में भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट ले जाना ज़रूरी है। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने 1995 के गेस्ट हाउस कांड में मुलायम सिंह के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया है। अखबार ने लिखा है कि बसपा के महासचिव एससी मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की है कि मायावती ने केस वापस लिया है। जनसत्ता अखबार में खबर है कि सेना ने सोशल मीडिया पर 150 प्रोफाइलों को लेकर अपने अधिकारियों को सतर्क किया है। सेना ने सलाह देते हुए कहा है कि इनका इस्तेमाल संवेदनशील सूचनाएं निकलवाने के लिए हनी ट्रैप के जरिए किया जा सकता है।
जी मेरे पास जनसत्ता है जिसमें उद्धव ठाकरे का बयान है जो शिवसेना में भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र में शिवसेना के बीच और बीजेपी के बीच गतिरोध बना हुआ है मुख्यमंत्री पद को लेकर। तो उद्धव ठाकरे का ये बयान है कि गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते, सहमति लागू हो। उनका ये कहना है कि जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया जाए। साथ ही एक और खबर है, एनजीटी ने कहा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने, कि औद्योगिक विकास जो है वो लोगों की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। हरियाणा सरकार को प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों की जो निरीक्षण अवधि है उसे लेकर ये कहा है कि आप जल्दी जल्दी निरीक्षण किया करें, ज़्यादा टाला ना करें, और सख्ती बरती है कि आप औद्योगिक विकास करें लेकिन जनता की हेल्थ जो है, जनता का स्वास्थ्य है, उसका भी ख्याल रखें।
जी एक कुछ अखबारों में खबर है कि कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को पाकिस्तान जाने के लिए राजनीतिक मंजूरी मिल गई है। वो शनिवार को पाकिस्तान में होने वाले करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले हैं। पहले इसको लेकर कुछ उलझन बनी हुई थी कि उनको मंजूरी मिली कि नहीं मिली।
जी इसके साथ ही लगभग सभी अखबारों में ये बात है कि राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनज़र चौकसी है और गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को सतर्क किया है। आरपीएफ ने कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और राज्यों को भी परामर्श जारी किया है कि स्थिति में नियंत्रण रखने के लिए वो जो ज़रूरी प्रयास हों वो करें।
दैनिक भास्कर ने भी इससे जुड़ी खबर दी है कि फैसले से पहले नफरत फैलाने वाले 20 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिए गए हैं। साथ ही सौहार्द की अपील की गई है, प्रधानमंत्री ने भी इसे लेकर कल अपील की थी। और हम देखें तो इसके अलावा एक खबर ये है इसके अंदर कि नीरव मोदी ने कोर्ट में कहा है कि अगर भारत भेजने का आदेश दिया गया तो खुदकुशी कर लूंगा। हालांकि ये खबर कल भी आई थी और आज इस अखबार ने दिया है फिर से।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले की, तो इसी को लेकर प्रश्न ये उठते रहे हैं कि क्या इस मस्जिद को मंदिर के अवशेषों पर बनाया गया था, क्या बाबरी मस्जिद का निर्माण मंदिरों को तोड़कर हुआ था। इस मुद्दे पर बहस बरकरार है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कुछ ही दिनों में आने की संभावना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन महानिदेशक बीबी लाल ने पहली बार 1976-77 में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद की विवादित जमीन का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था। उस टीम में के मोहम्मद भी शामिल थे। बीबीसी संवाददाता सलमान रावी ने के मोहम्मद से इन्हीं सवालों के अर्थ की बात की।
फिर एक्सकेवेशन जब किया तो एक्सकेवेशन जो पिलर खड़े रखने के लिए जो ब्रिक बेस होना चाहिए, जो पिलर बेस जो कहते हैं, वो पिलर बेस एक्सपोज किया और बहुत सारे टेराकोटा आइटम्स भी मिले। टेराकोटा का मतलब जो बेक्ड क्ले है
जी,
उसकी जो ऑफरिंग्स ह्यूमन बीइंग्स का एनिमल्स का, बहुत सारी चीजें मिली, क्योंकि ये सब चीजें मस्जिद से नहीं मिल सकते हैं, स्पेशली जो ह्यूमन बीइंग्स का, एनिमल का, ये बनाना इस्लाम में मना है, बिल्कुल निषिद्ध हराम कहते हैं।
तो ये जो आपने जो बात की इन पिलरों की, लेकिन मुस्लिम पक्षों का कहना है कि ऐसी कोई दीवार वहाँ मिली नहीं है, वो आर्ग्यू कर रहे हैं कि बोले कि मंदिर का हिस्सा थी दीवार, ऐसा नहीं है।
सेकंड एक्सकवेशन जो हुआ था वो जो डॉक्टर मणि साहब के अंडर में हुआ था, डॉक्टर बी आर मणि के अंडर में हुआ था, तो उसमें हम लोगों को 12 पिलर्स मिले थे, उसका अवशेष मिला था, लेकिन अब 50 से ज्यादा जन पिलर बेसिस मिल गया है, जिसका मतलब ये था कि इट वॉज ए ह्यूज टेम्पल। गुप्त काल में कोई भी मंदिर में अगर आप जाएंगे, जो गर्भगृह के सामने ऑन वन साइड राइट साइड में आपको देर इज ए लेडी स्टैंडिंग ऑन मकेरा, दैट इज क्रोकोडाइल, एंड ऑन द लेफ्ट साइड देर इज ए लेडी स्टैंडिंग ऑन टॉर्टोइस। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में नहा के, गंगा यमुना में नहा के एंड अंडरग्राउंड सरस्वती में भी आपका सारा पाप धो के यू आर गोइंग टू गॉड। तो वो मगर प्रणाली आपको कोई रेजिडेंशियल एरिया में नहीं मिल सकती है, इन बाजार एरिया में, इट वुड बी ओनली पार्ट ऑफ ए मंदिर। फिर 263 से ज्यादा जो है टेराकोटा फिगर्स मिले, उसमें बहुत सारे टेराकोटा एनिमल फिगर्स थे, ह्यूमन फिगर्स थे। अगर जो ना, अगर कोई मस्जिद होता तो क्या एनिमल फिगर्स मिल सकते थे? अनदर इम्पोर्टेंट एविडेंस वॉज दैट विष्णुहारी शिला फलक, दैट 20 लाइन वाला इंस्क्रिप्शन, वो भी मिला, एंड उसमें ये कहते हैं दिस इज डेडिकेटेड टू दैट विष्णु हु हैड किल्ड बाली। तो बाली को किसने मारा? दैट इज राम। सो 10 सिर वालों को किसने मारा? दैट इज ऑल्सो लॉर्ड राम।
सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आर्कियोलॉजी जो है वो बिल्कुल सटीक विज्ञान नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, ये कहा है।
आर्कियोलॉजी बिल्कुल एकदम प्योर साइंस है, क्योंकि इसलिए जो है ना इन्फ्रेंसेस वगैरह जो है ना, जो हिस्ट्री के जो मामला आता है तो उसमें इन्फ्रेंसेस आते हैं। आपको जो ना C14 डेटिंग है, C14 डेटिंग कम्प्लीटली साइंटिफिकल है, थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग है वो तो कम्प्लीटली साइंटिफिक डेटिंग है, फिर केमिकल डेटिंग है, तो इसी तरीके से डेंडोक्रोनोलॉजी है, ये बिल्कुल साइंटिफिक डेटिंग है, और बॉटनी में जैसे जोलॉजी में क्या बहुत ज्यादा हेल्प लेते हैं, फिजिक्स का हेल्प लेते हैं, तो इट्स ए प्योर साइंस। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन के लिए क्यों एक्सेप्ट किया? तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था इन लोगों को। आईने अकबरी में कहा है, आईने अकबरी के वॉल्यूम 3 में ये कहा है कि अबुल फजल ने खुद कहा है कि चैत्र के महीने में बहुत सारे लोग जो ना इकट्ठे हो जाते हैं और जो ना वहाँ वर्शिप करते हैं। ये अकबर के जमाने के आईने अकबरी। उसके बाद विलियम फिंच करके एक ट्रैवलर आए थे 1611 में, और विष्णु के बारे में उन्होंने लिखा है यहाँ बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें प्रेयर करते हैं, लेकिन इस्लामिक प्रेयर में कहा के बारे में नहीं कहा उन्होंने। जोसेफ स्टेफन टेलर, ही वाज एन ऑस्ट्रियन जेजुइट।
अच्छा,
जेजुइट मीन्स जो कैथोलिक प्रीस्ट था। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम ही हु हैड सेड या तो इसको बाबर ने गिराया मस्जिद को या औरंगजेब ने। तो पहले कंफ्यूजन जो क्रिएट किया है वो उन्हीं के रेफरेंस में है।
तो ये जो इतना इश्यू कॉम्प्लिकेट हुआ, ये आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या रही होगी कि इतना कॉम्प्लिकेशन हो गया इसमें, जबकि आप लोगों ने जाकर वहां पर एक्सकेवेशन किया और ये सब चीजें पता लगाई और बहुत पहले ही बता दिया था? सरकारों के रवैये कैसे रहे फिर इस रिपोर्ट को लेकर?
ये असल में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट किया है जो कुछ अलीगढ़ के हिस्टोरियन ने, जो अली मियां थे, अबुल हसन अली नदवी
जी,
लखनऊ के बहुत बड़े सबसे बड़े स्कॉलर थे, तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था, दैट वाज नॉट अ रिटन अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग हुआ था मुसलमान ये मुद्दे को छोड़ देंगे करके। और मैं हमेशा मुसलमानों से कहता हूँ, एक मुसलमान को मक्का और मदीना जितना इम्पोर्टेंट है उतना एक आम हिंदू के लिए ये इम्पोर्टेंट है। मुसलमान के लिए ये प्रोफेट मोहम्मद से कोई कनेक्शन नहीं है, या कोई अवलिया किराम से, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के या निजामुद्दीन अवलिया दिल्ली के, ऐसी कोई इम्पोर्टेंट आदमी से कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ एक राजा से है।
ये थी पुरातत्वविद के मोहम्मद की राय, जिनसे बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता सलमान रावी। चलते चलते आपको बता दें कि कल भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे T20 मैच में कप्तान रोहित शर्मा की 85 रन की शानदार पारी की बदौलत भारत ने राजकोट में खेले गए इस मैच में 8 विकेट से बांग्लादेश को हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। तीसरा और निर्णायक मैच नागपुर में 10 नवम्बर को खेला जाएगा। और चलते चलते एक बार मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ब्रितानी अखबार इकोनॉमिस्ट को दिए एक साक्षात्कार में नेटो गठबंधन को ब्रेन डेड बताया है। न्यूयॉर्क के एक जज ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी चैरिटी संस्था के पैसे के अवैध इस्तेमाल के मामले में $20 लाख जुर्माना देने का आदेश दिया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें, नमस्कार।